नमस्कार, आकाशवाणी से विश्व दर्पण के साथ मैं मुनीश शर्मा। मुख्य समाचार। ब्रिक्स देशों के राष्ट्रीय सांख्यिकी कार्यालयों के प्रमुखों की बैठक आज लखनऊ में शुरू। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने कहा, ईरान के साथ नए दौर की वार्ता आज। पाकिस्तान के खैबर पख्तूनख्वा में शांति रैली के दौरान आत्मघाती हमले में 14 लोग मारे गए। जापान और अमरीका ने येन को मजबूत करने के लिए संयुक्त हस्तक्षेप की पुष्टि की। और ग्लासगो राष्ट्रमंडल खेलों के समापन समारोह में अहमदाबाद को औपचारिक रूप से 2030 के राष्ट्रमंडल खेलों के अधिकार सौंपे गए। और अब समाचार विस्तार से। ब्रिक्स देशों के राष्ट्रीय सांख्यिकी कार्यालयों के प्रमुखों की दो दिन की बैठक आज से उत्तर प्रदेश के लखनऊ में शुरू हो रही है। हमारे संवाददाता ने खबर दी है कि भारत की अध्यक्षता में ब्रिक्स के सदस्य देशों ब्राजील, रूस, चीन, दक्षिण अफ्रीका, मिस्र, इथियोपिया, इंडोनेशिया, ईरान और संयुक्त अरब अमीरात के प्रतिनिधियों के इस बैठक में भाग लेने की संभावना है।
इस वर्ष भारत की ब्रिक्स अध्यक्षता का विषय सुदृढ़शीलता, नवाचार, सहयोग और स्थिरता के लिए निर्माण है। ब्रिक्स सांख्यिकी ट्रैक के अंतर्गत भारत ने परिवर्तन के प्रेरक के रूप में गुणवत्तापूर्ण सांख्यिकी इस विषय को अपनाया है। इसका उद्देश्य ब्रिक्स के माध्यम से सांख्यिकी के प्रसार, प्रणालियों में नवाचार और ज्ञान एवं सर्वोत्तम परिपाटियों के आदान प्रदान के क्षेत्रों में सहयोग को और मजबूत करना है। बैठक में सांख्यिकी उत्पादों को मजबूत करने, राष्ट्रीय सांख्यिकी प्रणालियों में सुधार, डेटा की पहुंच बढ़ाने और आर्थिक व क्षेत्रीय सांख्यिकी को सुदृढ़ बनाने पर चर्चा होगी। इसके साथ ही विकसित होते डेटा पारिस्थितिकी तंत्र में एआई की तैयारी विषय पर दो विशेष सह कार्यक्रम भी आयोजित किए जाएंगे। सुशील चंद्र तिवारी, आकाशवाणी समाचार, लखनऊ।
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि दुश्मन देश षड्यंत्र करके भारत के युवाओं को नशे की लत में खींचने के लिए कोई कसर नहीं छोड़ते हैं। मादक पदार्थों की तस्करी से कमाई करना और हमारे जैसे देश को तबाह करना, ये भी उनकी आतंकी साजिश का हिस्सा होता है और इसीलिए हमें प्रत्येक युवा को नशे के चंगुल से फंसने से बचाना है। उन्होंने कहा कि भारत विकसित राष्ट्र बनने की ओर अग्रसर है और इसके लिए युवाओं का शारीरिक रूप से स्वस्थ, मानसिक रूप से मजबूत होना और आत्मविश्वास से भरपूर होना आवश्यक है। श्री मोदी ने कल नई दिल्ली में वर्चुअल माध्यम से विकसित भारत संकल्प के लिए नशा मुक्त युवा अभियान आरंभ किया। 100 सप्ताह के इस जन भागीदारी अभियान के दौरान देशभर में हर रविवार को विशेष गतिविधियां आयोजित की जाएंगी। प्रधानमंत्री ने कहा कि नशे की लत लोगों को लक्ष्य से भटकाती है और इससे परिवार, समाज तथा राष्ट्र की शक्ति भी कमजोर पड़ जाती है।
नशा केवल शरीर को नुकसान नहीं पहुंचाता, नशा माँ की मुस्कान छीन लेता है, नशा पिता के सपनों को चूर चूर कर देता है। और जब परिवार में, समाज में ऐसा होता है और कहीं न कहीं राष्ट्र की शक्ति भी कमजोर पड़ जाती है। और इसलिए हमें हर एक युवा को नशे के चुंगल में फंसने से बचाना है।
विश्व दर्पण समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। ताजा समाचार जानने के लिए आप हमारे मोबाइल ऐप न्यूज ऑन AIR और हमारे सोशल मीडिया हैंडल @AIRNewsHindi को फॉलो कर सकते हैं। विश्व दर्पण समाचार में आपका फिर स्वागत है। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने कहा है कि ईरान के साथ वार्ता आज होगी। ये बातचीत मध्यस्थों के जरिए होने की उम्मीद है। एयरफोर्स वन में पत्रकारों से बातचीत में राष्ट्रपति ट्रंप ने पुष्टि की कि बातचीत के रास्ते खुले हैं।
सऊदी अरब, संयुक्त अरब अमीरात, कतर और ईरान के साथ कूटनीतिक बातचीत के कारण ही अमेरिका ने ईरान पर बड़े हमले को रोक दिया है। इस हमले की योजना पहले से ही बनाई गई थी। ये भी संकेत है कि होर्मुज जल डमरू मध्य के प्रबंधन के बारे में भी समझौता हो सकता है। ईरान के परमाणु निरस्त्रीकरण पर भी समझौता किया जाएगा। कूटनीति की ओर ये अचानक झुकाव ऐसे समय में आया है जब मध्यस्थ अमेरिका और ईरान के बीच एक सक्रिय ढांचे को फिर से शुरू करने करने की कोशिश कर रहे हैं। क्षेत्रीय मध्यस्थ पिछले महीने हस्ताक्षरित समझौते को फिर लागू करने का प्रयास कर रहे हैं ताकि ये सुनिश्चित किया जा सके कि रणनीतिक जलमार्ग 60 दिनों तक बिना किसी शुल्क के खुला रहे। उधर समुद्री गलियारे के संचालन के लिए संयुक्त कार्यप्रणाली पर ईरान और ओमान के बीच बातचीत अंतिम चरण में है। विश्व दर्पण के लिए मैं मनोज।
पाकिस्तान में खैबर पख्तूनख्वा प्रांत में कल शांति रैली के दौरान पुलिस थाने पर आत्मघाती हमले में 5 सुरक्षा कर्मियों सहित 14 लोग मारे गए।
ये विस्फोट तब हुआ जब शांति रैली स्वात जिले के काबल कस्बे में पुलिस थाने के सामने से गुजर रही थी। फिलहाल किसी भी समूह या व्यक्ति ने हमले की जिम्मेदारी नहीं ली है। 9 लोग मौके पर ही मारे गए जबकि 5 और लोगों की मौत की पुष्टि काबल अस्पताल में हुई। स्थानीय जनजातीय परिषद ने क्षेत्र में शांति की मांग करते हुए स्वात शांति रैली आयोजित की थी। परिषद ने आरोप लगाया कि पुलिस की निष्क्रियता से पिछले कुछ महीनों में क्षेत्र में सुरक्षा की स्थिति बदतर हो गई है। विश्व दर्पण के लिए विशाल शर्मा।
जापान और अमेरिका ने जापानी मुद्रा को 40 वर्षों के निचले स्तर पर गिरने से रोकने के लिए समन्वित येन खरीद हस्तक्षेप की पुष्टि की है। टोक्यो ने संकेत दिया है कि अगर आवश्यक हुआ तो वो और कार्रवाई को तैयार है। जापान के वित्त मंत्रालय ने पिछले सप्ताह अमरीकी वित्त विभाग के समन्वय से जापानी येन की खरीद की। वित्त मंत्री कातायामा सात्सुकी ने आज एक बयान जारी कर संयुक्त हस्तक्षेप की पुष्टि की है।
अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के उस बयान के बाद जापानी मंत्रालय ने संयुक्त हस्तक्षेप की पुष्टि की है, जिसमें उन्होंने घोषणा की थी कि वॉशिंगटन मित्रता के प्रतीक के रूप में और वैश्विक अर्थव्यवस्था को सहयोग देने के लिए येन को मजबूत करने में मदद कर रहा है। ये कार्रवाई हाल के महीनों में येन की अत्यधिक अस्थिरता से निपटने के लिए की गई थी। अमरीकी वित्त मंत्री स्कॉट बेसेंट ने भी जापान और अमरीका के समन्वित हस्तक्षेप की पुष्टि की है। इस कार्रवाई से येन के अनियंत्रित उतार चढ़ाव को रोकने के प्रयास किए गए हैं। विश्व दर्पण के लिए समाचार कक्ष से निखिल कुमार।
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और खेल मंत्री मनसुख मांडविया ने राष्ट्रमंडल खेलों में शानदार प्रदर्शन के लिए भारत के खिलाड़ियों की सराहना की है। राष्ट्रमंडल खेल कल ग्लासगो में एक भव्य समारोह में संपन्न हो गए। समापन समारोह में वंदे मातरम के गान के साथ भारत की सांस्कृतिक विविधता और परंपरा का प्रदर्शन किया गया। समारोह में 100वें राष्ट्रमंडल खेलों की मेजबानी के लिए भारत को ध्वज और कमान सौंपी गई। 2030 के राष्ट्रमंडल खेल अहमदाबाद में होंगे। भारत ने ग्लासगो राष्ट्रमंडल खेलों में 13 स्वर्ण, 17 रजत और 9 कांस्य सहित 39 पदक जीते और पदक तालिका में चौथे स्थान पर रहा। खेल मंत्रालय के सचिव हरिरंजन ने कहा है कि देश के खिलाड़ियों ने अपेक्षा से बेहतर प्रदर्शन किया।
26 के ग्लासगो कॉमनवेल्थ गेम्स में कई खेलों की विधाओं में कटौती होने के बावजूद भी देश की टीम ने इतना बेहतरीन प्रदर्शन किया है कि पहले से और हमारी अपेक्षाओं से कहीं गुना ज्यादा, तो ये हम सबके लिए एक बहुत सुखद संकेत है कि शायद वो जो एक टर्निंग पॉइंट स्पोर्ट्स की दिशा में देश में आना चाहिए उसका समय आ गया है। और 2030 में हम अगला कॉमनवेल्थ गेम्स भारत में अहमदाबाद शहर में आयोजित करने वाले हैं, ये भी हमारे लिए बहुत ही सुखद संयोग है और प्रतिष्ठा का विषय भी है।
मुख्य कोच सत्यनारायणन ने आशा व्यक्त की कि भारत 2030 के खेलों में अच्छा प्रदर्शन करेगा।
ओवरऑल इंडियन परफॉर्मेंस बहुत अच्छा है, आगे वाले वाला हम अच्छा करेगा। मेरा एथलीट बहुत खुश है, आप लोग देख सकते हैं क्लोजिंग सेरेमनी में। इवन स्कॉटलैंड ग्लासगो लोग को भी मैं धन्यवाद बोलता है, हमारा प्रिपरेशन इंफ्रास्ट्रक्चर में बहुत ध्यान दिया है। इवन गुजरात गवर्नमेंट ऑल्सो बहुत अच्छा इंटरेस्ट ले रहा है।
राष्ट्रमंडल टेबल टेनिस चैंपियनशिप कल नई दिल्ली में संपन्न हुई। मेजबान भारत ने शानदार प्रदर्शन करते हुए कुल 7 में से 6 स्वर्ण पदक जीते। और अंत में इस बुलेटिन के मुख्य समाचार एक बार फिर। ब्रिक्स देशों के राष्ट्रीय सांख्यिकी कार्यालयों के प्रमुखों की बैठक आज लखनऊ में शुरू। अमरीका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने कहा ईरान के साथ नए दौर की वार्ता आज। पाकिस्तान के खैबर पख्तूनख्वा में शांति रैली के दौरान आत्मघाती हमले में 14 लोगों की मौत। जापान और अमेरिका ने येन को मजबूत करने के लिए संयुक्त हस्तक्षेप की पुष्टि की और ग्लासगो राष्ट्रमंडल खेलों के समापन समारोह में अहमदाबाद को औपचारिक रूप से 2030 के राष्ट्रमंडल खेलों के अधिकार सौंपे गए। और इसके साथ ही विश्व दर्पण का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।